मैं हूं डॉक्टर खलील और हम वीडियो सीरीज मुकालमा सबके साथ लेकर हाजिर हैं और इसमें हमारे मेहमान हैं आज इदरीस ख्वाजा। इदरीस ख्वाजा इकोनॉमिस्ट हैं और इनका जो करियर है उसका आगाज़ उन्होंने अपने करियर का आगाज़ एज ए डेवलपमेंट बैंकर किया। उसके बाद ये पाइड जो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो बड़ा प्रेस्टिजियस इदारा है इस्लामाबाद में उसके साथ 20 साल वाबस्ता रहे। निजकारी क्यों नहीं हो पाती पिछले 20-30 साल से हम इसके पीछे पड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। तो जी इदरीस ख्वाजा साहब,
निजकारी के जहाँ तक ताल्लुक है खलील साहब, देखना ये है कि बहुत सारे जब हुकूमत निजकारी करने की कोशिश करती है तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स जितने भी होते हैं उससे जो लोग फ़ायदा उठा रहे होते हैं या उससे किसी न किसी तरीके से उनको उसकी आदत पड़ चुकी होती है, उनको ख़तरा ये महसूस होता है। मसलन एम्प्लॉइज़ हो गए तो उनको ख़तरा ये महसूस होता है कि शायद उनकी नौकरियों को जो है प्राइवेट सेक्टर में जो है ख़तरा रहेगा। तो एक तो एक अपोजिशन जो है इस तरफ से आती है।
ठीक,
ओवरऑल लिचकारी को जो है मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की अगर आप मारूजी सूरत हाल देखें, प्रेजेंट सिचुएशन गवर्नेंस की और मुख्तलिफ, तो ये प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है आप कह लें कि ये आगे कुआं है और पीछे खाई है।
अच्छा,
आगे कुआं इसलिए है कि अगर हम इसको स्टेट एंटरप्राइजेस को इसी तरह चलाते रहेंगे तो हुकूमत का इस पर बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है और वो एक बॉटमलेस पिट है। आप कह लें कि PIA है, आप कह लें स्टील मिल है, इन पे आप खर्चा करते जाएंगे, रिटर्न जो है कुछ नहीं आना।
ठीक,
तो एक तरफ तो जो है ये काबिल अमल नहीं है कि इसको हमेशा जो है इसी तरह
चलती रही चीज़ें, ऐसे नहीं है।
आइडियली वैसे भी जो है गवर्नमेंट का काम जो है बिजनेस करना नहीं है।
सही, बिल्कुल सही।
जो है इदारों को
एक असूली बात है,
असूली तौर पे प्राइवेट सेक्टर में ही जो है बिजनेस एंटरप्राइजेस को होना चाहिए। दूसरी तरफ जो है खाई की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप प्राइवेटाइज करना चाहेंगे तो जो है उसमें मसाइल क्या क्या आएंगे। मसलन जो है जब आपने स्टील मिल को जो है प्राइवेटाइज करने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई इसमें 22 अरब या कितने की जो है करप्शन जो है उसके जो है इम्कान जो है नज़र आते हैं और वो उसको उन्होंने जो है कैंसिल कर दिया।
अच्छा, सिर्फ इम्कान की बुनियाद पर?
जी, इम्कान की,
जो कि गलत भी हो सकते
जी, वो गलत भी हो सकते हैं। स्टील मिल में तो मतलब आपको एक मज़ाक़ेज़ बात ये बताऊं कि जब जो है केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछा कि आपने इसकी प्राइस जो है कैसे डिटरमिन की।
अच्छा,
तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा कि हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज़ किया है। अब ये एक टेक्निकल टर्म है, वो ठीक मेथड है फाइनेंस का जो है, एक बाकायदा सोफिस्टिकेटेड सा जो है मेथड। अच्छा, है जिसपे कि जो है प्राइस जो है एवेल्यूएट की जाती है एक गोइंग कंसर्न। लेकिन जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा आप स्टील मिल को डिस्काउंट पे बेचना चाह रहे हैं।
अच्छा,
तो ये इस टाइप की मजा के खेस बातें भी जो है होती।
डिस्काउंट का वर्ड यूज ना,
डिस्काउंट का वर्ड यूज, लेकिन वो उस मेथड का नाम है बेसिकली कि वो जो है प्रेजेंट वैल्यू जो है उसकी जो है डिटरमिन की जाती है। दूसरी तरफ ये भी है कि ये जितनी भी एंटरप्राइजेस को बेचने की कोशिश की जा रही हैं, जिस अब इसको अब जब बेच देंगे तो ये ऐसा नहीं है कि हम किसी जनरल स्टोर को बेच रहे हैं तो मार्केट में 1000 पहले से हैं तो 1001 हो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में तो वो जो है काम चलता रहे।
सही।
नहीं, ये पहले से मार्केट में 4 हैं और आप PIA को बेच देंगे तो वो 5 हो जाएंगे।
ठीक,
अब 1000 जनरल स्टोर्स के लिए आपस में कलूट करना तो जो है मुश्किल होता है कि वो आपस में मिल बैठ जाएं और कहेंगे जो है हम 100 रुपए से कम पे फला चीज़ नहीं बेचें।
जी,
लेकिन 5 अगर किसी में जो है प्लेयर्स हों किसी सेक्टर में तो 5 प्लेयर्स के लिए जो है मुमकिन है कि वो आपस में बैठ जाएं और कहें कि जी हम एयरलाइन का टिकट जो है इस्लामाबाद से कराची का इससे कम नहीं होगा।
जैसे हो रहा है प्रैक्टिकली पाकिस्तान में इस वक्त, क्योंकि 20 अराउंड 20, इसी तरह लाहौर से कराची का जो टिकट होता है आपको भी पता होगा 20 माइनस प्लस इस तरह चल रहा होता है सब कहीं।
तो एग्जैक्टली ऐसी बात है कि अगर ऐसी सूरत हाल में जो है एक रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती
जी
कि जो है उस वो जो है उस इंडस्ट्री को रेगुलेट करें। अब रेगुलेटर हर चीज़ के हैं। पहली तो बात यह है कि ये जो कंपटीशन की बात हो रही है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, फिर हर इंडस्ट्री के अपने भी रेगुलेटर्स हैं, बैंक्स के लिए स्टेट बैंक है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए नेप्रा है और ओग्रा है, इस तरह के जो है। लेकिन बहरहाल ये दो के थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हैं रेगुलेटर्स, लेकिन बहरहाल ये हकूमती इदारे हैं, इनकी गवर्नेंस उसी तरह की हो सकती है जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान की ओवरऑल गवर्नेंस
मजमूई वो जो उसका रिफ्लेक्शन है,
उसका रिफ्लेक्शन है। अगर हुकूमत पाकिस्तान की ओवरऑल गवर्नेंस ठीक नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि जी वो हम एक एनक्लेव बना लेंगे और वो स्टेट बैंक की गवर्नेंस उससे कुछ बहुत ज़्यादा 10 गुना बेहतर होगी, नेपरा की गवर्नेंस उससे 10 गुना बेहतर, ऐसा नहीं होगा। तो जब वीक गवर्नेंस हो और मार्केट में सिर्फ 4-5 प्लेयर्स हों तो फिर कंज्यूमर को जो है नुकसान हो सकता है।
अच्छा ठीक,
मसलन आपकी मैं एक मिसाल देता हूँ।
जी जी,
बैंक्स को हमने प्राइवेटाइज कर दिया। अभी हाल ही में जो है कोई 1-1.5 साल पहले जो है जब एक्सचेंज रेट जो है बहुत ऊपर जा रहा था और ये चार्जेस लगे हैं बैंक्स पे कि बैंक्स ने एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट किया है, आर्टिफिशली और ज़्यादा ऊपर किया।
अच्छा,
और इसका बाकायदा एविडेंस जो है नेशनल सेनेट की और नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी में जो है आ गया है।
अच्छा,
लेकिन अभी तक किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ, वजह क्या है? रेगुलेटर वीक है।
नहीं, लेकिन वो मुझे याद पड़ते हैं कुछ दिन हुए हैं, कुछ हफ्ते हुए अखबारात में आया था कि कुछ फाइन किया गया है स्टेट बैंक की तरफ से।
बहुत मामूली सा है।
अच्छा, जी
बहुत मामूली सा है ना, और मतलब है कि उसका आप नुकसान देखें कि अगर एक्सचेंज रेट जो है 280 होना चाहिए था और उसको वो अगर 300 पे ले गए हैं तो उस 20 रुपए की वजह से जो पेट्रोल महंगा आया है उसकी वजह से जो और चीज़ें हमें महंगी इंपोर्ट करनी पड़ी हैं उसका इन्फ्लेशन का असर पूरे पाकिस्तानी कौम ने बर्दाश्त किया।
बहुत वाइड सेपरेट इंपैक्ट था उसका।
तो बैंक्स ने पूरी कौम को इतना नुकसान पहुंचा दिया और उन पे जो है 1,00,000,000 का जो है फाइन लगा के खत्म, बात खत्म कर दी। तो ये रेगुलेशन जब रेगुलेशन वीक हो और उसमें जो है एंटायरली प्राइवेट सेक्टर हो तो फिर जो है ज़रा मुश्किलात जो है काफ़ी हो जाती। तो ये प्राइवेटाइजेशन एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है कि एक तरफ वीक गवर्नेंस है, दूसरी तरफ जो है कोलिजन के चांस हैं, तीसरी तरफ करप्शन के भी चांस हैं। अच्छा, करप्शन का भी जो है आप ऐसे ले लें कि जी ये बात होती है कि अच्छा मान लेते हैं कि जी स्टील मिल में 22 अरब की करप्शन हो रही, तो वो 22 अरब की करप्शन तो हमने बचा ली, लेकिन जो है अब तक 2007 की ये बात है, 2007 से लेकर 2024 तक या 23 तक हुकूमत पाकिस्तान 22 अरब क्या 100 अरब से 200 अरब से ज़्यादा भी जो है स्टील मिल को दे चुकी।
बिल्कुल हो चुका होगा, और अभी आगे पता नहीं कितना देना है। और
ठीक, तो जो है बेहतर ये था कि हम वो 22 अरब का नुकसान बर्दाश्त कर लें।
अच्छा, वो भी इमेजिनेशन में था अभी,
वो भी इमेजिन। हाँ, लेकिन इसके दो मसाइल, फर्ज करें कि वो ठीक है तो हम कहते हैं कि अगर तो वो 3-4 लोगों को अगर वो किकबैक उनके पास जा रहा है तो चले हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें कि जो है आप कोई 1988 वगैरह में चले जाएं, कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह जो है पार्लियामेंट में चल रहा था और जो है सदर पाकिस्तान ने कहा कि जो है नेशनल असेंबली जो है स्टॉक एक्सचेंज बना हुआ। अच्छा, अगर मैं सॉफ्ट अल्फाज में कहूँ,
गुलामी साहब खान की,
जी गुलामी साहब खान साहब ने कहा।
जी जी
ठीक।
अच्छा,
तो ये हकीकतें हम लोग जानते हैं कि पैसे के ज़रिए जो है हुकूमतों को बनाया भी जा सकता है, हुकूमतों को गिराया भी
जा सकता है। बिल्कुल,
अब जो है हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें से जो है अक्सर जो है उनका वो बिज़नेस से वाबस्ता है, ख़ास तौर पे शुगर के मिल्स के, तकरीबन हर पॉलिटिशियन की जो है शुगर मिल है। तो जो है ये प्राइवेटाइजेशन की रकम जो है अगर जो है अगर इसमें कोई करप्शन है, फर्ज कर लें चैनल ये बनाएं कि वो जो है किसी तरह पॉलिटिशियंस को जा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज को जा रही है, फिर वो इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्शन कैंपेन में, फिर वो इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं हुकूमत बनाने में, हुकूमत गिराने में। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस करप्शन के कोई छोटे मोटे नहीं हैं, बहुत वाइड हैं।
जी जी,
तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये आगे कुआं पीछे खाई है, इसको बहुत जो है कॉशियसली करने की ज़रूरत है। वो इस बात से कोई इनकार नहीं है कि जो है एंटरप्राइजेस को बहरहाल प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होना चाहिए, गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट के हाथों में उस वक्त नहीं होना चाहिए जब गवर्नेंस जो है गवर्नमेंट की वीक हो।
हाँ अच्छा, ये बहुत अहम आस्पेक्ट है जो आपने जिसकी निशानदेही की है। अच्छा, एक जो इसी बात से आपकी बात से ये बात निकलती है कि कहीं हमारे जहनों में, सबके जहनों में, चाहे वो कोर्ट्स में बैठे हैं लोग या सिविल सोसाइटी में हैं या आम लोग हैं या पॉलिटिशियंस हैं, अच्छा उनके जहनों में कहीं बैठा हुआ है कि जी बड़ा परफेक्ट तरीका कोई होना चाहिए प्राइवेटाइजेशन का ना, जिस पे कोई क्वेश्चन ना उठाया जा सके, जिस पे कोई दाग धब्बा ना, भाई ऐसे नहीं हो सकता। जैसा आपने बताया कि जब एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसकी गवर्नेंस जो है एक तरह से अगर हम उसकी कुछ स्कोरिंग करें तो शायद मनफी हो जाएगी वो, तो उसमें जब प्राइवेटाइजेशन होगी तो वो कैसे हो सकता है, मतलब एक आइलैंड उसमें हम कैसे बना सकते हैं, मसाइल तो होंगे उसके साथ। असल जो इशू है वो ये कि भाई प्राइवेटाइज हो जाए किसी तरह, जैसा आपने मिसाल दी कि भाई वो 22 अरब का एक इमेजिन करप्शन जो थी जो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक थी, स्टील मिल में होने वाली थी, उसे उन्होंने रोक दिया, लेकिन उसके बाद शायद 2200 अरब रुपये स्टील मिल पर लग गए।
जी एग्जैक्टली, है ना। अब खलील साहब, परफेक्ट तरीका बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो है कोई सोचा जा सकता है आउट ऑफ द बॉक्स चीज़।
जी
मसलन जब जर्मन यूनिफिकेशन हुई थी तो जो ईस्ट जर्मनी था वहाँ तो चूंकि
88 है मेरा ख्याल में, 88 जब वो बर्लिन वॉल जो है उसे गिराया गया था, 88
तो ईस्ट जर्मनी पे तो जो है चूंकि मास्को वगैरह का असर था तो वहाँ तो ज़्यादा जो है पब्लिक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, उन्होंने उसको प्राइवेटाइज किया है।
अच्छा,
और जो है अब मैं आपको बताऊं, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो हमारे टीचर थे डॉक्टर मुस्लिहुद्दीन, तो उन्होंने कहा कि क्या आप सोच सकते हैं कि प्राइस कभी नेगेटिव भी हो सकती
चीज़ों की,
चीज़ों
सही है,
तो वो क्लास को एग्जांपल नहीं दे सके। तो फिर डॉक्टर मुस्लिहुद्दीन ने हमें एग्जांपल दी कि गार्बेज, यू पे अ प्राइस
जी
टू समवन टू पे गार्बेज फ्रॉम योर होम।
बिल्कुल
ठीक, तो जर्मन यूनिफिकेशन के दौर में भी ईस्ट जर्मनी ने अपनी एंटरप्राइजेस को गार्बेज समझकर जो है प्राइवेटाइज
किया, सर आउट किया,
और ऐसी भी मिसालें हैं कि $1 पे भी दिया।
सही।
अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि अगर हम $1 पे, ₹1 पे किसी को दे दें तो फिर नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के जो है चीज़ें सामने आ जाएंगी, फिर ये होगा कि जी वो स्टील मिल के तो सिर्फ ज़मीन की ही इतनी कीमत है,
हाँ जी,
तो हम वो भी नहीं कर सकते। एक और तरीका हो सकता है जिस पे मैं अगर बात करूंगा तो शायद लोग कहेंगे कि ये महज़ा के खेस है,
नहीं,
लेकिन उस पर डिस्कशन हो सकती। देखिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए या उसके बोर्ड को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, किस टाइप का शख्स या किस टाइप का इदारा चाहिए, तो कोई डायनामिक शख्स होना चाहिए, कोई एनर्जेटिक शख्स होना चाहिए, कोई विजन वाला शख्स होना चाहिए, और जब हम ये कह रहे हैं कि $1 वायरा पे देना है तो कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिस पे कौम को एतमाद हो कि नहीं, फॉर एग्जांपल अब्दुल सत्तारी दी कि नहीं इनको दे दिया तो ये इसमें कोई गड़बड़ नहीं, ये इसको चलाएंगे,
फ्री भी अगर दे दिया
तो कोई अगर हम ऐसा सोचें कि हमारी जो NGOs है, जो अच्छी NGOs हैं कि जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया और अब एक बड़ा इदारा बन गए हैं और उनके जो एट द हेल्म लोग थे उन्होंने बहुत जो है काम किया है और उनकी माशरे में इज्जत भी बहुत है और लोग उनको आंखें बंद करके पैसा देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए, तो अगर ये उन ऑर्गेनाइजेशंस को दे दिया जाए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक दो ऑर्गेनाइजेशंस कहता हूँ।
जी बिल्कुल, नाम लीजिए।
मसलन अखुवत,
सही है, मेरे जहन में भी यही आ रहा था।
मसलन इंडस हॉस्पिटल,
जी सही है, बिल्कुल सही।
ठीक, अगर हम इस टाइप के इदारों को, और भी ऐसे एग्जांपल्स हो सकती हैं, हाँ इस टाइप के इदारों का हम एक कंसोर्शियम बना के या एक को,
और उनका भी है वो जो अदीब रिजवी का जो है,
अदीब रिजवी की जी है, SIUT,
हाँ बिल्कुल
ठीक, इनका कंसोर्शियम बना के हम इनको एक बोर्ड बना दें और उनको कहें कि आप ये PIE हमने आपको दे दिया, फ्री में दे दिया,
सही,
और आपने PIA को चलाना है और जो है इससे जो इनकम होगी वो आपके जो रफाई काम है उनमें इस्तेमाल हो सकती है, अगर इससे कोई टैक्स जनरेट होता है तो हुकूमत पाकिस्तान को जाएगा। और जो है आपने इसको खुद बैठ के डॉक्टर अमजद साकिब ने जो है पीआईए को नहीं चलाना, बोर्ड का काम ये है कि टू सिलेक्ट राइट काइंड ऑफ सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर,
बिल्कुल,
और उस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने चलाना है। लेकिन इनसे उम्मीद ये की जा सकती है कि ये जो सिलेक्ट करेंगे इस शख्स को, उसको मेरिट पे सिलेक्ट करें, और ऐसा नहीं है कि उनके पास काबिलियत भी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि पीआईए को लिए सिलेक्ट करने के लिए अपनी काबिलियत हो, एक जब इदारा इतना बड़ा खड़ा कर दिया है तो उसके लिए एक्सपर्टीज़ उन्होंने हायर की है ना बहुत सारी,
बिल्कुल ऐसे ही होते हैं,
वो पीआईए के लिए सिलेक्ट करने के लिए भी एक्सपर्टीज हायर कर सकते हैं कि राइट काइंड ऑफ पर्सन जो है कौन है। और जब आप इस टाइप के इदारे को देंगे तो कौम की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं आएगा कि जी गलत शख्स को दे दिया। तो एक्सपेरिमेंटल तौर पे किसी एक इदारे को पहले दे के देखा जाए कि ये स्कीम कामयाब होती है या नहीं, और फिर उसके बाद जो है इस तरह के जो है उस पर उस एक्सपेरिमेंट से जो है जो फीडबैक मिलेगा उसके बेसिस पे आगे जो है डिसीजंस जो है किए जा सकते हैं।
नहीं, मुझे ये आपकी प्रपोज़ल देखें ना, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की एक वो दलदल बनी हुई है और उसमें जितनी ज़्यादा प्रपोज़ल्स हमारे पास हों, जितने ज़्यादा मॉडल्स हम मतलब बना सकें, बिल्ड कर सकें कि भाई इस तरह किया जाए, इस तरह किया जाए, इस तरह किया जाए, तो उतने ही रास्ते निकलेंगे कि हम उस दलदल में से बाहर कैसे निकलें। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बात आपने की कि एक ये चले फर्ज करें ऐसे इदारों का, रिफाही इदारे जो हैं उनका एक कंसोर्शियम बन जाता है और उन्हें पीआईए दे दी जाती है। अच्छा, एक उसमें करना पड़ेगा, आपने जो बात की थी कि उसमें से जो प्रॉफिट वो जनरेट होता है उसको वो रिफाही कामों के लिए भी यूज़ करें, मेरे ख्याल में, ताकि ये तासुर ना बने कि भाई इसका जो प्रॉफिट है सारे का सारा रिफाही कामों की तरफ जा रहा है। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो एग्रीमेंट लिखा जाए, उसमें ये हो सकता है हाँ भाई इतनी परसेंटेज जो है वो आप रिफाही कामों में यूज़ कर सकते हैं और बाकी परसेंटेज जो है, ठीक है, टैक्सेस भी होंगे और बाकी परसेंटेज जो है आप उसको दोबारा उसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे, इस तरह की कुछ ना कुछ एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट जो बनना चाहिए ना।
एग्जैक्टली जी, क्योंकि इदारे को चलाने के लिए और इदारे को आगे बढ़ाने के लिए डेफिनेटली री इन्वेस्टमेंट की जो है ज़रूरत पड़ेगी प्रॉफिट्स की, तो वो एक तय किया जा सकता है कि जो री इन्वेस्टमेंट की ज़रूरियात हैं इदारे की वो पूरी करने के बाद या वो एक हद तक पूरी करने के बाद जो है वो जो है कुछ मतलब है कि जो चलाने वाले हैं उनको भी कोई इंसेंटिव तो देना होगा, तो वो एक परसेंटेज जो है रखी जा सकती है,
बिजनेस के तौर पे चलाना होगा ना उसे,
तो एक परसेंटेज रखी जा सकती है कि यानी आपके एक किस्म के सर्विस चार्जेस होंगे इदारे के, वो जो है आप इसमें से ले जाकर, यानी आपने वो खुद नहीं लेने हैं, अपने इदारे में जो कि एक रिफाई इदारा है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
हाँ ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, एक चीज़ और जो आपने ही की बताई थी अभी कि एक जो समझे एक पूरा जो गवर्नेंस का दायरा है, बड़ा दायरा जो गवर्नमेंट की पाकिस्तान की स्टेट की गवर्नेंस है समझें कि वो किस तरह की है, बहुत ही उसे बैड गवर्नेंस हम कह दें, नेगेटिव गवर्नेंस कह दें, तो जब फ़र्ज़ करें पीआईए की मिसाल है, फ़र्ज़ करें इसे इस मॉडल के तहत प्राइवेटाइज़ कर देते हैं या किसी और मॉडल के तहत प्राइवेटाइज़ कर देते हैं, तो 4-5 एयरलाइंस हैं पाकिस्तान में। अच्छा, 4-5 एयरलाइंस होने के बावजूद जो एयर टिकट है, एयर ट्रैवल है, वो एक्सपेंड नहीं हुआ है। अच्छा, लोगों के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव है वो, इस्लामाबाद से कराची जाना हो, कराची से लाहौर, क्वेटा, कहीं का भी, इतना लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती इदरीस साहब, ये कि क्यों परवाज़ें ज़्यादा नहीं बढ़ती। देखें, अगर फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद से कराची का 10,000 का टिकट हो तो कितने लोग सफ़र करेंगे, मेरा ख्याल में तादाद एकदम शायद 1000% बढ़ जाएगी जितने लोग इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं बाई एयर इस्लामाबाद से कराची। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं करते? देखें ना, ये ना हो ना कि वही चार, अच्छा प्राइवेटाइज तो कर दिया आपने पीआईए को, लेकिन वही 4-5 एयरलाइंस मौजूद हैं। एक जो ओपन स्काइज पॉलिसी है प्रैक्टिकली वो होनी चाहिए ताकि एयरलाइंस में कंपटीशन हो, आप सारे रूट्स ओपन करें, आप बिल्कुल बाहर की जो एयरलाइंस हैं उनको भी और यहाँ की एयरलाइंस को कम्पीट करने दें। देखिए ना, फिर जाके आप भी बाहर गए होंगे, मैं भी गया हूँ, और ख़ास तौर पर मैंने अमेरिका में देखा और मुझे हैरानी होती थी जिस तरह हमारे यहाँ तो बहुत रश है ना सड़कों पे, लेकिन कुछ ऐसी सड़कें भी होती हैं बाजू का जिन पे मतलब एक अच्छी तादाद में गाड़ियाँ चल रही होती हैं, रश नहीं लगता। तो अमेरिका में जब आप डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं तो ऐसे लगता है इधर से जहाज़ इधर भागा जा रहा है, इधर से जहाज़ इधर भागा जा रहा है, इतनी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग है उनकी और बाई एयर है वो सारी। तो किस तरह हुई है, इसी तरह हुई है ना, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती। देखिए मतलब इस्लामाबाद से कराची बाई ट्रेन जाना आपके 2 दिन ज़ाया हो गए, लाहौर से कराची जाना 1 दिन 24 घंटे ज़ाया हो गए आपके। अब बायर आप 1 घंटे में इस्लामाबाद से 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, क्यों नहीं होने देते ये?
एग्जैक्टली जी, अगर आप ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ा दें जी तो बहुत सारी जो है कॉस्ट आपकी जो है स्केल इकोनॉमीज आपकी आ जाए,
बिल्कुल
जो है कवर हो। अब ये अगेन बात जो है रेगुलेटर पे आती है कि रेगुलेटर क्या मजीद एयरलाइंस अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा, और एयरलाइन स्टार्ट करना कितना सहल है या कितना मुश्किल।
बिल्कुल सही,
यकीनन जो है एयरलाइन को स्टार्ट करना जो है एक बहुत मुश्किल काम है पाकिस्तान रेगुलेशन के हिसाब से।
जी सही।
तो अगर हुकूमत पाकिस्तान उसको जो है सहल बना देगी एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो इस फील्ड में आए, तो यकीनन जो है किराए जो है कम हो सकते हैं। और एक वक्त में जो है हुआ भी है, बाज़ वक्त जो है जब कोई नई एयरलाइन आई है जो है इस किस्म की, एक वक्त में एयर एशिया वगैरह आई है, तो जो है जब एयरलाइंस के दरमियान कंपटीशन बढ़ा है तो किराए काफ़ी कम भी हुए हैं। अच्छा। लेकिन वो एक लिमिटेड पीरियड। हाँ। एक मसला ये भी है कि दूसरी तरफ जो है एक आपका जो है स्टेट ओन्ड है। हाँ। उसके चूंकि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं तो उनके लिए फिजिबल नहीं होता, वो जो है अपने वो ज़्यादा ही रखते हैं। तो फिर एक मार्केट को सिग्नल मिल जाता है कि जी वो PIA तो इतना ले रहा है, तो फिर वो जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो भी बस उससे कोई 19-20 रुपए जो है कम करके जो है रख देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है नहीं होता। तो हल जो है इसका कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करना है
और लिमिटेड ना हो, ओपन हो ना। देखिए सब मतलब जो एक तरह से सब एयरलाइंस बिल्कुल आप इक्वली ट्रीट करें,
बिल्कुल।
और ये जो लाइसेंसिंग है, बाकी जो रेगुलेटरी रजीम जो बनाया हुआ है, उसको जितना आप एक तरह से फैसिलिटेशन की तरफ ले जाएं और इजी कर दें उसे अपना, ताकि ये देखें ना पाकिस्तान में ये एयर ट्रैवल एक्सपेंड करने के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है।
देखिए प्राइवेट सेक्टर को आप आने देंगे तो प्राइवेट सेक्टर नए नए आइडियाज़ लेके आएगा। मतलब है कि वो बाज़ वक्त सुना है यह है कि बाज़ एयरलाइंस ऐसी भी हैं कि जो बस की तरह चलती हैं कि बस आप जाएं और टिकट ले लें और वो
बिल्कुल है ऐसे
उस वक्त जो है चलती। तो ये नए नए आइडियाज़ जो है अगर आप प्राइवेट सेक्टर को काम करने देंगे तो नए नए आइडियाज़
बिल्कुल।
लेकिन हमारे यहाँ यही है कि वो कंट्रोल इतना ज़्यादा है ख़ासतौर पर एविएशन सेक्टर में कि जो है वो उससे बात आगे जो है बढ़ती नहीं।
तो देखिए ना वो कंट्रोल वाला माइंड सेट ही है मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की तरफ भी, और दूसरी तरफ भी एक तरह से है उसमें शायद एक वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग शामिल है, और कंट्रोल वाला माइंड सेट ही है जो PIA को प्राइवेटाइज नहीं होने दे रहा।
एग्जैक्टली देखिए कंट्रोल से अगर तो हमने कुछ हासिल किया हो ना,
हाँ
तो जी मसलन आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के एग्जांपल
सही,
अगर रेगुलेटर सही काम कर रहा होता जो भी उसको रेगुलेट कर रहा है तो क्या जो है गाड़ियों को ऑन होता?
सही,
गाड़ियों पे जो हर गाड़ी पे जो है बुकिंग प्राइस देनी पड़ती है,
प्रीमियम जिसे वो कहते हैं,
प्रीमियम देते हैं, ये तो एक ब्लैक मार्केट है ना।
बिल्कुल ब्लैक मार्केट है।
तो ब्लैक मार्केट फंक्शन कर रही है जो है, फिर आपने जब ये गाड़ियों के तौर पे ख़ास पे जब आपने फॉरेन कंपनीज को यहाँ लेके आए थे मैन्युफैक्चरिंग को, तो उनके साथ आमतौर पर एक प्रोग्राम एग्री किया जाता है।
अच्छा।
प्रोग्राम ये होता है कि जो है जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ वो जो जिसको CKD कहते हैं कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स आप जो है वो मंगवा सकते हैं, आपको बाहर से पार्ट्स मंगवाने हैं और सिर्फ यहाँ पे असेंबल करने हैं। लेकिन जो है उनके साथ एक डिलीशन प्रोग्राम तय किया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये एक्सेल जो है ये पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो है आप इसको अपनी पेरेंट कंपनी जापान वगैरह से इम्पोर्ट इसकी बैन हो जाएगी, नहीं कर
ठीक है।
वो डिलीशन प्रोग्राम तय तो हो जाता है,
अच्छा
उस पर अमल नहीं हो,
प्रैक्टिकली अमल नहीं हो पाता,
और वो जब से कंपनी शुरू हुई है वो उस वक्त से जो है वो आ रहा है और वो बाहर से इम्पोर्ट ही हो रहा है, और किसी ना किसी बहाने के तौर पे कि ये आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, वो जो है वो प्रोग्राम चलता रहता है। अगेन ये वीक गवर्नेंस।
हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना कि जो प्रोग्राम तय हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उसको इन्फोर्स करवाए,
उसको इन्फोर्स, तो गवर्नमेंट उसको इन्फोर्स नहीं करा सकती। तो चूँकि गवर्नमेंट जो है एज ए रेगुलेटर, गवर्नमेंट की ओवरऑल गवर्नेंस अच्छी नहीं है, तो गवर्नमेंट के एज ए रेगुलेटर भी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, तो बेहतर यही है कि ये प्राइवेट सेक्टर में चीज़ें हों ताकि जो है वो खुद जो है फंक्शन कर सके।
ठीक है। अच्छा, एक मॉडल भी से कहा जा सकता है, मैं मेरे जहन में जो चीज़ है, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पे एक पूरा एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बना है पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, तो जितनी रुकावटें पैदा होती हैं, जितने एहतजाज होते हैं, और हर तरफ से जो एक शोर गौगा बुलंद होता है कि नहीं होने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, कभी कोई बीच में कूद पड़ता है, कभी खुद अज़खुद नोटिस हो जाता है, एक प्राइवेटाइजेशन जो है वो रुक जाती है, उसका उस पर अमल नहीं हो पाता है। सवाल ये है कि ज़िम्मेदारी तो पॉलिटिशियंस की बनती है ना, मैंडेट तो लोग उन्हें देते हैं, तो ये क्यों क्यों नहीं पॉलिटिशियंस इस अपनी ज़िम्मेदारी को क्यों नहीं समझते, और वही सवाल के फिर अपनी ज़िम्मेदारी को समझ के ये काम क्यों नहीं करते?
असल में ये है, देखिए जितनी भी रिफॉर्म्स हैं ना, उनका रिफॉर्म करने का मतलब यह है कि कोई चीज़ ठीक नहीं चल रही।
हाँ जी, बिल्कुल सीधी से
इसलिए जी, तो कोई चीज़ ठीक नहीं चल रही तो वो उसके ना ठीक चलने से भी कोई ना कोई शख्स फ़ायदा उठा रहा है।
हाँ जी,
ठीक। तो जब अब उसको ठीक करना चाहेंगे तो जो शख्स जो वुड बी लूज़र है वो रेजिस्ट करेगा।
सही,
ठीक। अब वो वुड बी लूज़र्स के पास वक्त जेन्युइन कंसर्न भी हो सकते हैं कि गवर्नमेंट ने असल में किया ये है कि ये जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं इनको पॉलिटिशियंस ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के तौर पर भी जो है इस्तेमाल किया
है,
अपने जो है वोट्स हासिल करने के लिए जो है नौकरियाँ दी। अब उनको आपने नौकरियां तो दे दी, और किसी शख्स को जो है आपने 25 साल की उम्र में नौकरी दी, अब उसकी उम्र जो है 50 साल हो गई, और वो जो है आप उसमें पीआईए में स्टील मिल में और उससे एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है करवाते रहे। अब उसके पास 50 साल की उम्र में अगर आप उसको फायर कर देंगे तो उसके पास तो और कोई स्किल भी नहीं है।
सही,
तो वो क्या करेगा? तो वो एक जेन्युइन कंसर्न भी है, लेकिन बहरहाल वुड बी लूजर से आम तौर पे सबसे बड़ा कंसर्न जो है एम्प्लॉयज़ की तरफ से होता है।
सही।
अब मसलन पीटीएम, अब बाज़ वक्त जो है ये स्ट्रांग हो, एक तो कोई जेन्युइन तरीका ढूंढा जा सकता है, और आम तौर पे जो इसमें तरीका कार ढूंढा जाता है वो ये है कि गोल्डन हैंडशेक का।
हाँ, एक तो एक ये तो प्रैक्टिकली भी हो, इसको
हो रहा
किया जा चुका है।
बाज़ वक्त जो है एम्प्लॉयज़ को नज़र आता है कि गोल्डन हैंडशेक के बाद भी जो है वो नुकसान में रहेंगे। वो इस वजह से भी हो सकता है कि कई इदारों में तो घोस्ट एम्प्लॉयज़ भी हैं कि वो तो नौकरी पे तो आते ही नहीं है, उनको तो सर घर में तनख्वाह, उनको आप हैंडशेक भी दे दें तो फिर भी वो नुकसान में। अब आप मिसाल ले लें कि 2007 वायरा में जो है पीटीसीएल की प्राइवेटाइजेशन, उनको हैंडशेक वायरा जो है ऑफर किया गया, लेकिन एम्प्लॉयज़ की रेजिस्टेंस थी।
जी जी,
जो है और जो है अब पीटीसीएल काम भी उनका ऐसा टेक्निकल है कि अगर वो स्ट्राइक कर दें तो वो जो है बंद हो जाता है, और गवर्नमेंट के काम भी बहुत सारे सेंसिटिव काम भी बंद हो जाते हैं। लेकिन कुछ फॉर्चुनेटली या ऐसा हुआ कि इस टाइप का काम जो है कोई एक दूसरा इदारा भी जो है कर रहा था, और उस वक्त जो है हुकूमत जो है मिलिट्री जनरल प्रेसिडेंट मुशर्रफ की थी, अभी जो है पॉलिटिशियंस का दौर जो है नहीं आया।
जी जी,
तो आर्मी का जो ये सिग्नल्स का जो ब्रांच है वो भी किसी हद तक जो है ये कम्युनिकेशंस का जो है काम करते हैं। तो हुआ ये कि पहले एम्प्लॉयज़ ने जो है स्ट्राइक की जो है धमकी दी, तो उसकी प्राइवेटाइजेशन को जो है पोस्टपोन कर दिया गया।
अच्छा,
और फिर साइलेंटली जो है कोई एक डेढ़ महीने के बाद जो है इसको आर्मी की सिग्नल्स ब्रांच ने बाकायदा टेक ओवर कर लिया पीटीसीएल को, और जो पीटीसीएल के टेक्निकल एम्प्लॉयज़ वगैरह थे उनके लिए पीटीसीएल में दाखिला बंद कर दिया।
अच्छा,
और फिर जो है उसको प्राइवेटाइज किया गया। अब इस केस में लेकिन ऐसा था कि ऑपरेशंस को चलाने के लिए कोई ना कोई मौजूद था। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसा, शायद स्टील मिल के लिए शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी ना हो, शायद पीआईए के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी ना हो अगर पायलट स्ट्राइक पे चले जाएं वगैरह जो है, हो भी सकती है लेकिन बास केसेस में ना भी। तो बहरहाल वुड बी लूजर्स जो है उनकी अपोजिशन को किसी ना किसी तरीके से टैकल करने के, कभी प्यार मोहब्बत से, कभी स्टिक्स से
जो है पड़ेगा,
दोनों चीज़ें इस्तेमाल करके जो है करने की जो है ज़रूरत पड़ेगी।
अच्छा, देखिए ना, आपने जो ये मिसाल दी कि पीटीसीएल की, जब करना हो तो फिर कर लेते हैं
जी,
ना करना हो तो नहीं
नहीं करते।
एक विल पावर, एक पॉलिटिकल विल जब मौजूद होती है तो उसके तरीके निकल आते हैं। अच्छा, लेकिन जब नहीं करना चाहते तो फिर 100 बहाने हैं ना करने के। अच्छा, जो आपने बताया ये बात कीजिए एम्प्लॉयज़ का, यकीन एम्प्लॉयज़ के जो कंसर्न्स होते हैं उनकी जो तशवीश है उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। एक जैसे मिसाल दी आपने, जिसने 20-30 साल वहाँ पे काम किया है और यकीनन उसके पास अब कोई और स्किल नहीं है, वो बाहर जाके क्या करेगा। यकीनन उसका एक गोल्डन हैंड शेक तरीका भी हुआ। अच्छा, उसके और भी तरीके हो सकते हैं, मॉडल बनाए जा सकते हैं, जैसे शेयर्स दिए जा सकते हैं उससे ना उसके, या और ऐसा कोई तरीका अख्तियार किया जा सकता है कि चलें जी, मतलब एक अरसा समझे कि फ़र्ज़ करें उसकी 5 साल सर्विस बाकी है तो वो एम्प्लॉय रहेगा, उसे जो भी मतलब जो उसे प्राइवेटाइज जब करते हैं और जो ख़रीदता है उसे, वो उसे निकालेंगे नहीं वो, लेकिन उसकी सैलरी जो है वो गवर्नमेंट देगी। क्योंकि देखो ना, ये जो भी पार्टी आके उसे परचेज करती है उनको पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए ना, कि एज ए बिजनेस जब वो उसे चलाना चाहेंगे तो वो जो भी करना चाहें कर सकें। तो एम्प्लॉयड वो रहेगा, वो रहे, लेकिन उसकी सैलरी गवर्नमेंट से ड्रॉ करेगा अपनी ना। तो इस तरह के मॉडल तो हम बहुत सारे बना सकते हैं। और ये आपकी बात बड़ी सही थी जो आपने मिसाल दी थी ना मशरकी जर्मनी की भी, कि देखें ना बिल्कुल नेगेटिव प्राइस पे भी बेचे गए हैं लोगों को। और यहाँ भी आपने देखा है बाज़ अवकात डिस्कोस की बाज़ अवकात और दूसरी एंटिटीज़ हैं जो SOEs में से, उनको मतलब बिडिंग की जाती है कि, लेकिन आता ही नहीं है कोई ख़रीदने के लिए। इतना ख़राब कर दिया गया है, इतना ख़राब कर दिया गया है। और यहाँ तो मुझे लगता है शायद मशरकी जर्मनी वाली मिसाल भी सादिक नहीं आएगी। वो कहेंगे ना ये लो जी, हम इसके साथ आपको $10 मिलियन भी दे रहे हैं, ले लें, तो शायद ना लें लोग, क्योंकि इश्यूज़ इतना ख़राब कर दिया गया है चीज़ों को ना। तो एक मतलब मॉडल्स हमें यकीनन, कहना मैं जो चाह रहा हूँ कि हमें प्राइवेटाइजेशन के लिए बिल्कुल एक क्रिएटिविटी के साथ नए से नए मॉडल बनाने होंगे, सोचने होंगे।
एग्जैक्टली, और केस टू केस बेसिस पे यह चलना होगा
जी।
और बिल्कुल आपने ये जैसे कहा कि एम्प्लॉयज़ को जो है जैसे सैलरी गवर्नमेंट दे, या जो है वो स्टॉक, जो आपने शेयर्स का कहा ना,
शेयर्स की बात,
स्टॉक ओनरशिप प्लान्स होते हैं।
हाँ जी,
अच्छा है, एम्प्लॉयज़ को है शेयर्स दे दिए जाते हैं, तो जब इदारा को प्रॉफिट अर्न करेगा, डिविडेंड अर्न करेगा, तो उनको मिलेगा। अगर शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी तो उनके एसेट्स की वैल्यू ऊपर चली जाएगी। इस टाइप के प्लान्स जो है ऑफकोर्स सोचे जा सकते हैं। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन में एक दूसरी बात भी कहूँगा कि एक इशू ये भी है कि शायद प्राइवेटाइज करने के बाद भी जो है हालात बाज़ चीज़ों में बेहतर ना हो, डिपेंड करता है कि उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस उसके बाद भी जो है कितनी रहेगी।
और इंटरफेरेंस रेगुलेटरी भी,
रेगुलेटरी
जी।
असल देखिए, मसलन नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इसको भी प्राइवेटाइज करने पता नहीं हो सकती भी है या नहीं, लेकिन और अगर आप वो लिस्ट में देखें ना, तो सबसे बड़ा नुकसान जो है, जो एक आउटलायर है, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी।
अच्छा,
लेकिन जो है अगर तो नेशनल हाईवे, लेट्स सपोज के जी NHA ने ये किया कि मुजफ्फरगढ़ तक, राजनपुर तक, चीचों की मलियां तक मोटरवे ले गए, तो अब वो उस मोटरवे का इस्तेमाल तो बहुत कम होगा।
हाँ जी,
तो फिर कॉस्ट रिकवर तो नहीं हो सकती।
सही,
लेकिन अगर ये डिसीजन NHA का अपना होता और NHA में कोई प्रोफेशनल MD होता, तो फिर तो आप NHA को ब्लेम कर सकते थे। लेकिन अगर ये डिसीजन जो है प्राइम मिनिस्टर का या कम्युनिकेशन मिनिस्टर का है कि फलां जगह तक मोटरवे लेके जाना है, तो इसमें फिर NHA का क्या कसूर
है? बिल्कुल भी नहीं।
या जो है NHA का जो MD है वो जो है
प्रपोजल लेके गया हो,
वो जो है वो 22 ग्रेड का ऑफिसर है, वो सेक्रेटरी कम्युनिकेशन भी है या रह चुका है, उसने तो 3 साल बाद वापस चला जाना है, तो जो हुकूमत उसको कहेगी वो उस पर करेगा। तो जो है अगर तो इदारे अपने तौर पर डिसीजंस कर रहे हों और नुकसान में जा रहे हों तो उनको ब्लेम किया जा सकता है। तो क्या प्राइवेटाइज करने के बाद जो है फिर जो बाद में सड़कें बननी होंगी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, क्या उनका क्या होगा?
नहीं, बिल्कुल आपका ये कंसर्न भी और सवाल सही है। अच्छा, मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि एक मॉडल जो है ये भी बनाया जा सकता है कि पैरेलल, मतलब उस जो भी सेक्टर है उसको डीरेगुलेट कर दिया जाए, लिबरलाइज कर दिया जाए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरों को आने दिया जाए उस सेक्टर में, उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, उसमें और चीज़ें आएंगी, बाहर से भी, लोकल भी, जो भी आना चाहता है। अच्छा, यूँ उस सेक्टर में एक कंपटीशन होगा। अच्छा, कंपटीशन के नतीजे में जो भी SOE या SOEs हैं उस सेक्टर की, खुद बखुद या तो वो कम्पीट करेंगी या फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से वाइप आउट हो जाएंगी। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। लेकिन और ये एयर जो एविएशन का सेक्टर है उसमें ये किया जा सकता है। बिल्कुल ओपन कर दें आप, कुछ ना करें पीआईए को, छोड़ ना करें प्राइवेटाइज, लेकिन बाकी ये लाइन चल रही है ना, लेकिन पीआईए को अगर कोई आप प्रिविलेजेस दे रहे हैं ख़त्म कर दें, बिल्कुल ओपन कंपटीशन आने दें, हर एक को आने दें और उनको चलाने दें यहाँ पे। आहिस्ता आहिस्ता अभी जो लोग समझते हैं ना कि जी पीआईए वो नेशनल फ्लैग पे मतलब वो करियर है और ये है और वो है और इस तरह चला करती थी तो इस तरह चला करती थी, उनके जहनों में है ना कि शायद अब भी इसे उस तरह चलाया जा सकता है, तो वो उनका शौक भी पूरा हो जाएगा, उनको भी नज़र आ जाएगा भाई ये कंपटीशन में पीआईए कहाँ है, कंपीट कर सकेगी तो रहेगी।
यही बात है कि जी हम कहते हैं कि वो कंपीट करेगी, लेकिन जो हकूमत का इदारा होता है फिर उसको कोई ना कोई फेवर्स मिल रहे होते हैं,
सीधी सी बात है।
मसलन जो है अब कहते हैं जी कि नेशनल बैंक जो है प्रॉफिट में है और बड़ा अच्छा बैंक है, और ये नेशनल बैंक से आप हकूमत पाकिस्तान का जो ज़ीरो इंटरेस्ट पे पैसा रखा हुआ वो निकाल दें और फिर देखेंगे वो कितना प्रॉफिटेबल है।
बिल्कुल
पीएसओ से जो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल्स को सिर्फ जो है ऑयल शेयर, मेरा ख्याल यही है कि ऐसा है कि ऑयल इंपोर्ट करने की इजाज़त सिर्फ पूरे पाकिस्तान के रिक्वायरमेंट, वो सिर्फ पीएसओ को, और फिर वो आगे देते हैं पीएसओ, और यकीनन उसमें इनका कोई मार्जिन होगा। अब पीएसओ से ये चीज़ आप निकाल दें, फिर जो है अब पीआईए के लिए ये ऑब्लिगेशन ख़त्म कर दें कि आपने हर हाल में पेट्रोल पीएसओ से ख़रीदना है, और जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने डिस्कोस के लिए आप ये रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दें कि हर हाल में आपने पीएसओ से पेट्रोल ख़रीदना है, आप चाहें तो शेल से ले लें, आप चाहें तो किसी और, फिर आप देखेंगे
तो शेल वाले चले गए बेचारे।
ये चीज़ें आप ख़त्म कर दें जो कि उनको एक कंपेटिटिव के कंपेटिटर्स के ऊपर उनको एडवांटेज मिल रही है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, ये एडवांटेजेस आप ख़त्म कर दें तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी सही पता चलेगी कि वाकई प्रॉफिट में है कि नहीं।
हाँ जी,
तो ये एक मिसनोमर है कि बाज़ पब्लिक सेक्टर इदारे जो है प्रॉफिट में होंगे, लेकिन अभी उनको कोई अनफेयर एडवांटेज मिल रही है।
बिल्कुल होगी कोई,
वो एडवांटेज ख़त्म होने के बाद सही पता चलेगा कि जो है वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का स्टेटस जो है क्या है।
हाँ, बल्कि वो एक जगह प्रेजेंटेशन थी इसी तरह की, तो उसमें उन्होंने बताया कि भाई ये इदारे जो है प्रॉफिट में हैं, लेकिन फिर किसी ने उस पर क्लैरिफाई किया कि भाई ये आपकी ये जो अकाउंटिंग की गेम है ना, ये उसमें प्रॉफिट में है, अदरवाइज़ ये प्रॉफिट में नहीं।
एग्जैक्टली
एक्सैक्टली। हाँ जी,
तो ये मसाइल काफ़ी सारे हैं, वो ख़ास तौर पर बैंक्स का ये है कि गवर्नमेंट का पैसा जो है वो गवर्नमेंट ने ज़ीरो इंटरेस्ट पे रखा होता है, क्योंकि उनको होता है कि जी कभी भी निकलवाना है, और वो जिस बैंक के पास भी है और वो ज़्यादातर जो है नेशनल बैंक के पास होता है।
अच्छा।
तो नेशनल बैंक जो है कुछ स्टेट बैंक के एजेंट के तौर पे भी, कुछ स्टेट बैंक के उसकी भी उनको रेवेन्यू मिलता है, तो इस टाइप के जो है हकूमत के जो भी इदारे हैं उनको जो है इस टाइप की एडवांटेजेस मिलती हैं। आजकल तो शायद नहीं है, पहले तो इवन ये भी था कि जब ये प्राइवेट एयरलाइंस नई आई थी तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए कंपल्सरी था कि उन्होंने हर हाल में पीआईए पे ही ट्रेवल करना, बाद में शायद ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई कि जो है पीआईए सबको सर्व नहीं कर सकता, लेकिन शुरू में थी ये रिस्ट्रिक्शन।
ये ओपन मतलब सेक्टर को ओपन करने वाली बात तो ना हुई ना।
और दूसरा आप मसलन आप दूसरी तरफ ये वाला अस्करी बैंक देख लें, तो आर्म फोर्सेस के जितने भी पैसा है वो अस्करी बैंक में।
अच्छा, दूसरे बैंक में नहीं है?
नहीं,
ये कोई है इस तरह की कोई रेगुलेटरी वो है कोई मतलब कोई
रेगुलेटरी या वो चूंकि उस इदारे का अपना है ना, इवन आप कह लें कि बैंक ऑफ पंजाब हो गया, बैंक जो प्रोविंशियल बैंक्स है, बैंक ऑफ खैबर, तो हुकूमत है खैबर पख्तून केपी की गवर्नमेंट का पैसा जो है वो खैबर बैंक में, पंजाब गवर्नमेंट का जो पैसा है वो पंजाब बैंक में, बैंक ऑफ पंजाब में, तो ये उनको एक अनफेयर एडवांटेज है। तो जब आप मार्केट में प्लेयर्स हों और साथ में आप एक अपना वो भी शुरू कर लें तो फिर वो कंपटीशन के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं।
हाँ नहीं, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि भाई जो बैंक ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है वहाँ रखें अपना पैसा, यही बनता है ना।
हाँ,
असल तो सेंस तो यही बनती। अच्छा, ये जो एक बात आपने की थी ना कि केस टू केस देखना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह समझ रहा हूँ कि जो ये बात मैंने की कि जैसे एक सेक्टर को आप ओपन कर दें, डीरेगुलेट कर दें, लिबरलाइज कर दें, उसमें कंपटीशन होगा और फिर जो भी कंसर्न एसओई होगी खुद ब खुद वाइप आउट हो जाएगी, लेकिन सारे सेक्टर्स में ऐसा नहीं किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये भी है, एक स्टील मिल का सेक्टर तो ऑलरेडी ओपन है, वहाँ तो चल रहा है या इम्पोर्ट कर रहे हैं आप यहाँ से लोकली भी स्टील जो है बनाया जा रहा है। तो दूसरा, अब अगर हम रेलवेज़ की मिसाल ले लें तो अब इसमें इशू आ जाता है कि इस सेक्टर को कैसे ओपन करेंगे आप, उसमें कंपटीशन कैसे लाएंगे, नहीं आ सकता उसमें उस तरह का। अच्छा, और ये भी कि साथ देखें ना, आप कोई 200 से ज़्यादा SOEs हैं और 100 के करीब कमर्शियल SOEs हैं। कमर्शियल SOEs तो अब तक हो जानी चाहिए थी,
बिल्कुल।
और लेकिन बहरहाल उसमें सबसे बड़ा इशू जो अब रेलवे का भी बना हुआ है कि क्या किया जाएगा उसका, और इस कदर डिटीरियोरेशन हुई है, सफ़र करना रेलवे में एक हॉरिबल एक्सपीरियंस बन चुका है। चाहे ये भी हुआ है उसमें, ट्रेन जो हैं जैसे ग्रीन लाइन ट्रेन है, कुछ और ट्रेन है उनकी जो मतलब वो प्राइवेटाइज कर दी हुई है, टिकटिंग प्राइवेटाइज कर दी, उसमें सर्विसेज जो है वो प्राइवेटाइज कर दी, लेकिन इतना बुरा हाल है ना, कहीं आप कंप्लेंट कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो वो बल्कि मैं इसे यूँ कहता हूँ, जितना केयरलेस पब्लिक सेक्टर है पाकिस्तान का, तो क्योंकि पब्लिक सेक्टर के का रिफ्लेक्शन होता है प्राइवेट सेक्टर, वो भी उतना ही केयरलेस है।
अब रेलवे का जहाँ तक स्पेसिफिकली है ना, एक तो रेलवे के रेवेन्यू के सोर्सेज दो हैं, एक तो पैसेंजर्स है
जी,
दूसरा कार्गो।
हाँ जी।
अब जहाँ तक रेलवे का कार्गो का बिजनेस है, वो तकरीबन ना होने के बराबर अच्छा। है जो एक ज़माने में हुआ। अब पब्लिक सेक्टर में तो एक इदारा खड़ा करने का मकसद ये होता है, जैसे कहें कि नेशनल बैंक को गवर्नमेंट का बिजनेस मिलता है, PIA को गवर्नमेंट का बिजनेस मिलता है, तो वो जो गवर्नमेंट का तकरीबन तमाम कार्गो की ट्रैफिक थी वो पहले रेलवे के थ्रू होती थी, या और प्राइवेट सेक्टर की भी जो है आपका कार्गो का इदारा यही था
जी जी।
अब मसला ये है कि एक ही काम करने के लिए हमने पब्लिक सेक्टर में दो इदारे खड़े कर दिए और वो आपस में कम्पीट
NLC। हाँ जी।
तो अब वो जितना भी रेलवे का कार्गो का बिजनेस था वो NLC के पास चला गया। तो ये पब्लिक सेक्टर में एक ही काम करने के लिए दो इदारे जो है, ये ज़रा ना समझ में आने वाली जो है बात है।
या तो बिल्कुल ओपन कर देते हैं,
या तो बिल्कुल ओपन कर देते, वो भी नहीं किया। तो ये जो है, जब चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगी तो इनएफिशिएंसीज जो है इस टाइप की होंगी। एक और मैं बात करना चाहता हूँ, देखिए कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है ना, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है NGOs को दे दें, क्योंकि कोई प्राइस डिटरमिन करने की, लेट सपोज के कोई नीयत ख़राब नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कैपेसिटी इश्यूज भी तो हैं ना, कि हम और भी बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन के अलावा और भी बहुत सारे काम हम बुरे तरीके से कर रहे हैं। तो जब हम इतने काम बुरे तरीके से कर रहे हैं, तो उसमें हम कैसे उम्मीद कर लें कि प्राइवेटाइजेशन का अमल हम बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे।
सही है, जब आवे का आवे ख़राब है तो उसमें से जो ईंट निकलेगी, एक ज़रूरी नहीं कि वो ईंट सही निकल आए, जी इस ईंट को हम सही निकाल लें।
मतलब मैं जो एक इंटरव्यू याद आता है कि वो कोई से IG को कोई इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा जी पुलिस में ये खराबियाँ हैं, ये खराबियाँ, तो उसने कहा जी पुलिस इसी माशरे से आती है। ठीक, तो वो जो आपकी प्राइवेटाइजेशन की प्राइस डिटरमिन करने वाले लोग हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटियों से निकले हुए हैं, इसी माशरे से आए, बेशक वो फॉरेन कंसल्टेंट सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन क्या फॉरेन कंसल्टेंट को सिलेक्ट करना, हम जो है
करेंगे तो वही,
हम क्रिकेट के लिए जो है फॉरेन कोच सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन क्या हम वो कोच सही सिलेक्ट करते हैं?
यही
ठीक। अब आप एग्जांपल एक ले लें PTCL की, अभी तक जो है $800 मिलियन जो है वो उसके नहीं आए, और ये प्राइवेटाइजेशन हुई थी 2007
जी।
तो अब हमने डील में कहीं ना कहीं खराबी की है ना,
गड़बड़ है,
रिकॉर्डिंग में तो कुछ था नहीं था, एक बार हमें कैंसिल करना पड़ा, फिर हमने किया, कहीं ना कहीं हमने डील में कोई ख़राबी की है। तो हमसे ये भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि हम जो प्राइवेटाइजेशन की डील बनाएंगे वो कोई बहुत अच्छी बनाएंगे,
इसलिए
बेहतर यह है कि इसको गार्बेज के तौर पे जो है
निकालना चाहिए जैसे भी हो ना। अच्छा, साथ जैसे आपने मशरकी जर्मनी की मिसाल दी, तो मैंने पढ़ा था इनके बारे में, जो चेकोस्लोवेकिया है, अब तो चेक रिपब्लिक है वो ना
जी,
तो उसके जो वेलवेट रेवोल्यूशन था, उसके डॉक्टर वैक्लव क्लास थे। अच्छा, बाद में वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, प्राइम मिनिस्टर भी बने, प्रेसिडेंट भी रहे वहाँ के। अच्छा, उनका एक इंटरव्यू था और उसमें उन्होंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें इस तरह की बताई ना, उन्होंने कहा कि मतलब जैसे जर्मनी था, UK था, अच्छा वो साल भर में कोई एक एंटिटी प्राइवेटाइज कर दी उन्होंने, हमारे तो कहते सारा था ही, मतलब एक तरह से स्टेट सेक्टर है सारा, पब्लिक सेक्टर ही था यहाँ, क्योंकि सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी पहले, प्राइवेट सेक्टर में तो था ही कुछ नहीं। तो हम तो यहाँ पे एक दिन में सैकड़ों SOEs जो है वो प्राइवेटाइज कर देते थे बैठ के, और हमने ये कभी सारा कुछ इतना किया ही नहीं, क्योंकि हम ये करना चाहते थे, एक चीज़ हमने तय कर ली थी कि प्राइवेटाइज कर देना है, बस ख़त्म हो जाएगी बात, उसके बाद देखा जाएगा फिर जो कुछ भी होगा ना। लेकिन हमारे यहाँ देखें ना, अभी भी 200 से ज़्यादा SOEs, 100 के करीब कमर्शियल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना गवर्नमेंट के पास, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा ना, इस तरह कोई भी चीज़ कभी सही नहीं हो सकती।
इसको यही आप जो चेकोस्लोवाकिया की आपने एग्जांपल दी है, इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा कि फैसला कर लें कि हमने देना है, लेकिन जो है अगर आप इसको कंट्रोवर्शियल तरीके से करेंगे कि वो जिस फलां के रिश्तेदार को जिसका एविएशन में बैकग्राउंड है उसको दे दें, तो फिर जो है ये नहीं हो सके। अगर आपने ये फैसला कर लेना है कि इसको बहरहाल करना है, तो इसको आपको नॉन कंट्रोवर्शियल लोगों को जो है देना होगा। वो नॉन कंट्रो, मैं नहीं कह रहा कि जी एनजीओस की इतनी कैपेसिटी है कि वो ये सब कुछ कर लें,
बिल्कुल
पहले एक को करके देखते हैं, फिर उसके बाद जो है क्या हो सकता
है। हाँ, हो सकता है, लेकिन इसमें आपका मॉडल ठीक है इदरीस साहब, लेकिन इसमें फिर वही बात है कि बाहर से भी किसी को बुला के दिया जाएगा तो उस पर भी एतराज़ आ जाएगा। अच्छा, फिर वही जो अभी हमने बात की थी कि गार्बेज तो बन चुकी हैं बाज जो हैं, उनकी में इतनी ख़राबी हो चुकी कोई ख़रीदना नहीं चाहता, लेकिन आपने करना तो है कुछ उनका, या तो बिल्कुल उसे ख़त्म कर दें।
हाँ हाँ,
ठीक है ना, या तो ये हो सकता है कि फिर जो भी उसके एसेट्स हैं उन्हें बेचें, उनको जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो आपने देना है दे के ख़त्म कर दें।
एग्जैक्टली, अगर ऐसा भी करना है तब भी मैं यही कहूँगा कि वो अगर एनजीओ उसको देंगे ना, तो उन पर पब्लिक को एतमाद है कि जी स्टील मिल को एनजीओ को दे दें, वो उसकी ज़मीन बेच के जो है जो करना चाहें कर लें, कुछ हुकूमत को दे दें, कुछ अपने रिफाई, मतलब है कि वो पैसा ठीक है कि एनजीओ को जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तानी आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होगा ना, तो शायद एतराज़ात जो है कम हो जाएंगे। अगर आप किसी एक शख्स को दे देंगे और वो बाद में पता चले कि ये तो प्रॉपर्टी टाइकून है और उसने वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बना दी, तो फिर जो है आपके लिए बहुत सारे जो है मसाइल पैदा हों। तो इसका हल जो है खैराती इदारों को देना ही जो है सबसे बेहतर जो है बनता है।
अच्छा, अब ये भी है कि इस मॉडल को यकीनन थोड़ा सा इस पे काम करने की ज़रूरत है, और फिर ये देखना होगा कि पाकिस्तान के खैराती इदारे जो हैं इस चीज़ के लिए तैयार भी हैं कि नहीं।
एग्जैक्टली, अभी तो मैं तो अपने तौर पे कह रहा हूँ, हमने उनसे किसी से बात नहीं की।
नहीं, सही,
उनसे बात करने के लिए देखना होगा कि नंबर वन वो ज़हनी तौर पर तैयार है या नहीं है, नंबर टू उनकी कैपेसिटी है या नहीं।
जी,
कैपेसिटी का मुझे थोड़ा सा एतबार इस तरह से है कि ये नहीं कि हम 100 दे देंगे तो फिर तो कैपेसिटी नहीं होगी, कि अगर उन लोगों ने अपनी काविश से जो है ज़ीरो से स्टार्ट करके इदारे को इतना बड़ा कर लिया और सिर्फ पब्लिक ट्रस्ट की बेस पे किया है, तो नंबर वन ऑनेस्टी तो है, नंबर टू जो है विजन भी कुछ ना कुछ है और कैपेसिटी भी कुछ है, और इदारे को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, मैनेजेरियल एबिलिटी।
जी,
मैनेजेरियल एबिलिटी भी मौजूद है कि इदारे को इतना बड़ा कर लिया, तो ये चंद चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी चलाने के लिए होती हैं, वो कुछ जो नोबल काम जो लोग कर रहे हैं उनमें चंद लोग ऐसे नज़र आते हैं कि जिनमें हैं, और ढूंढे जाए तो और भी निकल सकते हैं।
जी जी, अच्छा, एक जो हम समझते हैं और आप भी इस बात को मानते होंगे कि बिज़नेस के अंदर जो एक डायनामिक होती है, डायनामिक्स जो है उसकी प्रॉफिट से रिलेटेड सबसे बड़ा जो उसमें इंसेंटिव होता है किसी भी बिज़नेसमैन के लिए, वो प्रॉफिट है। अच्छा, क्या जब हम इस तरह का एक मॉडल बना के ये रिफाही इदारे हैं उनको देते हैं, ये ठीक है, जैसा अभी पहले हमने बात की कि उसमें एक अग्रीमेंट में लिख दिया जाए कि भाई इतने परसेंट आप रिफा पे ख़र्च कर सकेंगे काम, उससे ज़्यादा नहीं प्रॉफिट। अच्छा, बाकी क्या वो उसे उसमें उनके लिए वो जो एक प्रॉफिट मोटिव है वो रहेगा या नहीं रहेगा, वो कैसे, मतलब
मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो उन्होंने खुद इसको चलाना नहीं है, उनका प्राइमरी काम ये होगा कि PIA का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेलेक्ट करना
जी,
के जो PIA को बिजनेस की लाइंस पे, प्रोफेशनल लाइंस पे जो है चलाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो बोर्ड पे लोग होंगे
जी
उस इदारे के, उस बोर्ड का काम, और बोर्ड को हेड जो है वो रिफाई इदारे का हेड जो है बोर्ड को हेड कर रहा होगा, तो जो है उनका काम ये है कि PIA के लिए पॉलिसी सिर्फ बनाना, और जो है उनका राइट CEO सिलेक्ट करना, और जो है आप कह लेंगे फिर उसको फ्री हैंड दे देना कि आपने इसको बिजनेस के तौर पर चलाना। इंटरफेरेंस जो है ना, देखें जी, मसलन वो मेरा हाल है रॉकीफेलर है या किसी की एग्जांपल है कि जिसने एक बहुत बड़ी ग्रांट दी वर्जीनिया यूनिवर्सिटी या किसी को बनाने के लिए, और वो वहाँ पे कुछ पहले वो किसी जिसको उसने सिलेक्ट किया प्रेसिडेंट या वाइस चांसलर वगैरह, वो किसी कॉलेज या कहाँ पे जो है पढ़ाता था, तो उसने कहा कि उसको कहा कि मैंने आपसे मिलना है। उसने कहा कि नहीं 11 बजे में मिलना। उन्होंने कहा नहीं मेरी तो 11 बजे क्लास होती है। उन्होंने कहा अच्छा मैं आपके दफ्तर में इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने 2 घंटे रॉकफेलर ने जो है इंतज़ार किया।
अच्छा,
वो जो है शख्स आया, उसको कहा कि मेरा ये प्लान है, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस इदारे को हेड करें, इसको बनाएं, ग्रांट पैसा मेरा, पैसा दे दिया। यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन आई, तो जो है यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन के लिए जो है उसको बुलाया गया रॉकफेलर को। उन्होंने कहा नहीं मेरा आना मुनासिब नहीं, बस मैंने आपको दे दिया आपने, तो आप जिसको सिलेक्ट, आपका काम यह है कि टू चूज द राइट पर्सन, ये सबसे बड़ा काम है। एक बार राइट पर्सन आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर उसको फ्री हैंड दे दें कि वो जो है इदारे को चलाना है और बिजनेस की लाइन पे चलाना है, एनपीओ एनजीओ की लाइन पे नहीं चलाना।
अच्छा, इसमें फिर जो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि वो जो बोर्ड है जिसमें ये बड़े ऑनेस्ट लोग हैं, बड़ा इनका एक क्रेडिबल स्टेचर भी है, जैसे आपने बात की कि देने ही इसीलिए है ना उन्हें, क्योंकि इतराज़ ना हो सके, तो वो लेकिन उनका तो जो मोटिव है वो प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि वो ख़ुद तो उसमें ओनरशिप नहीं है उनकी। तो क्या उससे अगरचे मतलब ये मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि बिल्कुल एक नया मॉडल, एक नया एक्सपेरिमेंट हो सकता है, इसे करके देखा जा सकता है, लेकिन यकीन है इसमें से वो प्रॉफिट मोटिव, जो पर्सनल प्रॉफिट मोटिव होता है वो मिसिंग है। जैसे एक बिजनेसमैन का हो सकता है, फर्ज करें PIA किसी बिजनेसमैन को बेची जाती है, तो उसका जो मतलब प्रॉफिट मोटिव होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा।
इसमें जो है ये है, उनका मोटिव जो है ये होगा NGO का कि जो है इसका अगर प्रॉफिट जो है 100 रुपये होगा तो उसमें से 40 रुपये जो है NGO को मिलेंगे। अच्छा, अपने रिफाई कामों के लिए।
अच्छा,
तो उनको प्रॉफिट जनरेट करने में उनको इंटरेस्ट होगा, क्योंकि 100 रुपये जनरेट होंगे तो उनको 40 रुपये मिलेंगे।
जी जी,
तो इसलिए जो
अच्छा,
है
मतलब, हाँ,
प्रॉफिट का मोटिव किल नहीं होगा।
अच्छा ठीक है, हाँ आपने उसे इस तरह जोड़ा है कि उसमें समझे जो अगर जितना ज़्यादा वो प्रॉफिट होगा उसमें से उनकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी उस तरह। अच्छा मतलब एक बिल्कुल मतलब आई एम ओपन टू इट कि हमें
मतलब आइडिया है, मैं कह रहा हूँ कि इसको डिबेट किया जाए।
सही है, बिल्कुल सही,
डिबेट किया जा सकता है।
नहीं देखिए ना, हम बिल्कुल ओपन, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करनी है और नहीं हो पा रही, तो हमने सारा कुछ देखना भी क्या हो सकता है, कैसे हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि हम जैसे मशरकी जर्मनी ने वो गारबेज समझ के बेच दिया, वो भी नहीं मुमकिन है। अच्छा, ईस्ट जर्मनी में जैसे एक एक दिन में उन्होंने उठा उठा के दर्जनों जो है प्राइवेटाइज कर दी, और जितने भी गई हैं किसी ने कोई इसकी डिटेल नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, उस तरह कर दी। तो हमें भी कुछ ना कुछ तो करना है, और हम असल में सारी ये गुफ्तगू भी इसीलिए कर रहे हैं कि एक तो लोगों को भी पता चले कि क्या हो रहा है, क्या मसाइल हैं, क्या रुकावटें हैं, और साथ ये भी कि भाई हल क्या हो सकती हैं, उनके क्या रास्ता निकाला जा सकता है, कैसे इनका जो बर्डन, जो टैक्स पेयर्स पे इन SOEs का बर्डन पड़ा हुआ है, उस बर्डन को ख़त्म कैसे किया जाए।
हुकूमत अगर ये जहन में चीज़ निकाल देना कि प्राइवेटाइज करके हमने इससे कोई रेवेन्यू जनरेट करना है, तो मसाइल आसान हो जाएंगे। हुकूमत बास चीज़ों के रेवेन्यू के अलावा फ़ायदे होते हैं। मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ कि ये जो इंटरनेट की बैंडविड्थ और ये सारी जो है, गवर्नमेंट क्या करती है कि PTA जो है सेल करती है, स्पेक्ट्रम उसको कहते हैं, स्पेक्ट्रम सेल करती है ये मोबाइल ऑपरेटर्स को, और उसकी प्राइस जो है जो फर्स्ट टाइम उन्होंने की थी तो कोई $292 मिलियन वगैरह पे जो है बेचा गया था। जब गवर्नमेंट को पता चला कि ये इतने में बिक जाता है, तो गवर्नमेंट ने कहा ये तो डॉलर का सोर्स है, तो अब वो जब भी स्पेक्ट्रम बेचना चाहते हैं उसकी प्राइस इतनी हाई रखते हैं कि कोई मोबाइल ऑपरेटर आता ही नहीं है बिट करने। अगर वो सिर्फ इसको ये सोच लें कि इससे इंटरनेट जो है दूर दराज इलाकों तक पहुंच जाएगा, गांव तक पहुंच जाएगा, और उससे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, उसके एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, मुल्क को जो वो दूसरा फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट अगर उसको जहन में ले आए और फिलहाल इस फायदे को छोड़ दे, तो जो है बात जो है ग्रोथ GDP के लिए जो है काफ़ी बेहतर।
बिल्कुल सही, ये बिल्कुल कंसिडरेशन होनी चाहिए कि चीपर हो जाएगा इंटरनेट, दूर दराज पहुँचेगा, स्पीड बेहतर होगी उसकी,
तो इसी तरह जो है गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को छोड़ दे कि हम PIO को प्राइवेटाइज करेंगे तो हमें इतने मिलियन डॉलर्स मिल जाएंगे, वो सोचें कि हमारे यहाँ बर्डन है, ये गार्बेज है, इस गार्बेज को हमने किसी ना किसी तरह फेंकना है घर से, ये घर में ताफुन फैला रहा है।
लेकिन 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 उस ताफुन को कोई शायद महसूस नहीं कर रहा है, या वो आदी हो चुके हैं उस ताफुन,
आदी हो चुके हैं। असल बात ये, अगर आप 17th century इंग्लैंड में चले जाएँ तो जो होता ये था कि बादशाह जो है लोगों की जमीन, हुकूमत का खर्चा कैसे चलता था, बादशाह जंगें भी बहुत लड़ता था,
माल गनीमत आता था,
वो लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेता था, लोगों से लोन लेता था, वापस नहीं करता था,
खराज वसूल करते थे।
तो जो यूके इंग्लैंड के उस दौर के बरतानिया के जो अमीर लोग थे पार्लियामेंट के, उन्होंने जो है एक एग्रीमेंट किया बादशाह के साथ कि भाई हम आपको इतना पैसा देंगे, हम इतना टैक्स देंगे, और उसके बाद जो है आपने हमारी ज़मीन को, हमारी प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाना। तो बादशाह को समझ आ गई कि उसको एक परमानेंट सोर्स मिल गया, और जो है दूसरी तरफ जो है अमन भी कायम हो गया,
सिक्योरिटी मिल गई अपनी।
लेकिन उस वक्त की जो सूरत हाल थी, उस वक्त सेंट्रल बैंक नहीं होता था, हुकूमत के पास नोट प्रिंटिंग मशीन नहीं थी। अब हुकूमत के पास नोट प्रिंटिंग मशीन है तो हुकूमत को जो है हमारे टैक्स की ज़रूरत नहीं, नोट प्रिंटिंग से जो है बाद में इन्फ्लेशन और उसके जो असरात हैं वो एक अलहदा है। लेकिन वक्ती तौर पे हुकूमत के डॉलर के मसले नहीं हल किए जा सकते, लेकिन लोकल करेंसी को छाप सकते हैं, तो हुकूमत छापे जा रही है। अगर टैक्स नहीं भी मिलता तो जो है हुकूमत जो है उस तरीके से जो है पूरा करती,
छाप के तनख्वाहें दिए जा रहे हैं बस।
ठीक, अब हुकूमत का अगर ये सोर्स बंद हो जाए, फिर हुकूमत को जो है अवाम पर रिलाय करना पड़ेगा कि जो है अवाम के टैक्स से ही जो है हमारा पैसा चले। मुख्तलिफ IMF मुख्तलिफ वगैरह जो है वो चीज़ें कोशिश आपसे करते हैं कि जी 4% से ज़्यादा GDP का डेफिसिट नहीं होना चाहिए वगैरह, लेकिन गवर्नमेंट तरीके निकाल लेती है। IMF ने कहा कि जी आप स्टेट बैंक से नहीं बोरो कर सकते, अब स्टेट बैंक जो है बैंकों को लेंड कर देता है और हुकूमत बैंकों से बोरो कर
ले, इधर से नहीं तो इधर से
उधर से पकड़
कर ले।
तो जब तक हुकूमत का ये सोर्स बंद नहीं होगा फाइनेंसिंग का, हुकूमत जो है ठीक नहीं हो सकता।
मतलब बंद मेरा ख्याल है किया भी नहीं जा सकता। देखिए ना, लेजिस्लेशन होती है, वो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट भी बना, लेकिन कहाँ है वो, कोई नहीं पूछता,
अमल नहीं,
बिल्कुल अमल नहीं होता। चीज़ें जैसे कितने ही कानून बने पड़े, कोई अमल नहीं होता उन पर।
यही एक है कि हमें कानून बनाने का बहुत शौक है, फिर उस पर अमल करने का हमें शौक नहीं है, फिर उसको किसी तरह मैनिपुलेट करके हम बाद में अमेंड भी कर देते हैं, ख़त्म भी कर देते हैं। तो ओवरऑल गवर्नेंस का इशू है और गवर्नेंस बहुत वीक है।
वे आउट अच्छा आपने निकाला है, लेकिन एक जो बात आप कर रहे हैं कि एक तो कन्विंस करने की ज़रूरत है कि इसे गार्बेज समझें, ऐसी गार्बेज जो आप पे बोझ बनी हुई, जो आपके लिए नुकसानदेह है, प्रेजेंटली भी नुकसानदेह और फ्यूचर में भी नुकसानदेह। जैसे स्टील मिल की मिसाल आपने दी हुई है कि वो 2200 अरब की एक तखयली जो करप्शन सुप्रीम कोर्ट को नज़र आ रही थी उस वक़्त, उसके अच्छा वो उसे रोकते रोकते पता नहीं कितने 22,000 अरब रुपए लग गए होंगे उस पर, और दूसरी चीज़ों पे भी, कि अगर वो उस वक्त प्राइवेटाइज हो जाती और उससे टैक्स की कितना भी जनरेट हो सकता था हुकूमत के लिए, तो कितनी सारी कंसिडरेशन।
एग्जैक्टली यही बात, थोड़ा सा मीडिया का भी इशू है कि जब हम इसको प्राइवेटाइज करने लगते हैं तो वो मीडिया कहता है कि जी फैमिली सिल्वर को जो है औने पौने भेज दिया और वगैरह जो है। अब वो जो है मीडिया के जो है किसी चीज़ को एवेल्यूएट करने के, और जो जिन्होंने प्राइवेटाइज करना है वो उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है और उनके मकासद मुख्तलिफ होते हैं। मीडिया स्टील मिल को एवेल्यूएट करेगा तो वो उसकी ज़मीन की कीमत देखेगा, लेकिन स्टील मिल की ज़मीन की कीमत तो नहीं देखनी, हमने तो स्टील मिल की गोइंग कंसर्न कि उसको चला कर क्या प्रॉफिट अर्न किया जा सकता। ज़मीन की कीमत तो आप तब देखें कि उसको बंद करना हो,
ऐसे नहीं, ऐसे हो ही सकती चीज़।
तो ये जब आप गोइंग कंसर्न किसी की चीज़ की कीमत लगाते हैं तो वो उससे बहुत मुख्तलिफ होती है जो उसके एसेट्स की कीमत है।
सही,
लेकिन आम शख्स जो है उसको एसेट्स की नज़र में देखता है, लेकिन जो है असल में जो ख़रीदार है उस पर तो आमतौर पर हुकूमत ये रिस्ट्रिक्शन भी लगा रही होती है कि आपने इसको बंद नहीं करना, आपने इसको चलाना है, क्योंकि एम्प्लॉयज भी मौजूद हैं और जो है वो बहरहाल कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस भी कर रही है, वो चीज़ भी जो है वो प्रोडक्ट भी कोई उसकी भी जो है ज़रूरत होती है।
अगर तो बंद करना है तो हुकूमत ख़ुद बंद करे, ठीक है, जो उसके एसेट्स हैं उनको अलहदा करके जो भी जिस तरह उनको बेचे डिस्पोज ऑफ करे और ख़त्म हो गई बात ना। लेकिन अगर किसी को बेचना है तो जो भी ख़रीदेगा वो लाइबिलिटीज़ तो नहीं ख़रीदेगा ना, आप तो उसे चलाने के इरादे से ख़रीदेगा और उसे आप लाइबिलिटीज़ नहीं दे सकते, आप उसे एम्प्लॉयज़ का बोझ उठा के नहीं दे सकते, इतना सारा बोझ भी ले जाओ उठा के कोई भी नहीं लेगा।
अब असल में ये भी है ना कि पास इदारे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको वाकई बंद ही करना पड़े, जब बंद करना है तो फिर एसेट्स को बेचना है, लेकिन जिस तरह का जिस लेवल का ट्रस्ट है लोगों पर, लोगों का हुकूमत पर,
बहुत बड़ा इशू है,
तो लोग ये कैसे एतबार करेंगे कि जो है ये जो एसेट्स की कीमत जो गवर्नमेंट ने लगाई है वो सही लगाई।
सही
है, तो वहाँ गवर्नमेंट चाहे गोइंग कंसर्न के तौर पे करे, चाहे लिक्विडेशन वैल्यू के तौर पे करे, गवर्नमेंट पे जब तक लोगों का एतबार नहीं होगा मसाइल जो है रहेंगे।
जो ट्रेड यूनियंस हैं या और इस तरह की एनजीओज हैं जो प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं, किसी ख़ास एंटिटी की प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं, तो उनके साथ बैठना तो चाहिए ना टेबल पे, उनके साथ गुफ्तगू तो करनी चाहिए, एक डायलॉग तो होना चाहिए। इसी तरह मीडिया में मैंने नहीं देखा कभी, बहुत कम ऐसा होता है कि फ़र्ज़ करें किसी एंटिटी को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है और उस पर एहतजाज हो रहा है और एतराज़ात हो रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उस प्राइवेटाइजेशन कमीशन है या जो भी इदारा बनाया गया है उसकी तरफ से कोई भी आके वहाँ पे वजाहत दे रहा हो, बता रहा हो कि भाई ये ऐसे चीज़ है, ऐसे चीज़ है, ऐसे है चीज़, तो ये इस तरह हो रही हैं चीज़ें। तो यकीनन थोड़ी सी एजुकेशन तो करनी पड़ेगी ना इस चीज़ में।
एग्जैक्टली, गवर्नमेंट का एक मसला ये भी है कि गवर्नमेंट प्रॉपरली बाई इन नहीं क्रिएट करती, कर नहीं तो, लेकिन इशू वही गवर्नेंस का ना, जैसे गवर्नमेंट बाकी काम अच्छा नहीं कर रही, वो बाय इन का काम भी अच्छा नहीं कर रही। जहाँ तक खलील साहब आपने बात पीटीसीएल की है ना, ये याद रखिए कि आप कह रहे हैं पीटीसीएल करना, हमने फैसला कर लिया तो कर लिया, पीटीसीएल पॉलिटिकल दौर में प्राइवेटाइज नहीं हुआ,
मुशर्रफ का दौर।
हाँ, तो वो सही है, वो पॉलिटिकल दौर और मिलिट्री दौर में फ़र्क है।
सही,
पॉलिटिकल दौर में जो सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशंस हुई हैं तो आप वो कह लें कि स्टार्ट हमने बैंक से किया है 1990 में, हबीब बैंक और एमसीबी को जो है प्राइवेटाइज किया है। ये किसी हद तक जो है ऑन बैलेंस तमाम चीज़ें देखें तो जो है बेहतर प्राइवेटाइजेशंस थी, हो गई। और फिर जो है मिलिट्री दौर में दो और बैंक प्राइवेटाइज हुए, मिलिट्री दौर के अवाइल में 2001-02 में एलाइट बैंक और दूसरा यूनाइटेड बैंक। लेकिन अब अगेन रेगुलेटर का देखें, मैं आप एक और एग्जांपल बता
अच्छा हूं। इसमें एक जो था एम्प्लॉयज़ के कंसोर्शियम ने ख़रीदा था,
एलाइट बैंक एम्प्लॉयज़ के कंसोर्शियम ने, और वो बाद में जो है दोबारा किसी और ने ख़रीद लिया एम्प्लॉयज़ से भी।
अच्छा, ये हो चुका है,
हो चुका है, एम्प्लॉयज़ के पास अभी सच नहीं। अब देखें, आपको भी शायद, मुझे तो फ़ोन आया है, आपको भी शायद फ़ोन आया हो बैंक से, अपने बैंक से मुझे फ़ोन आया कि ये आपका जो है सेविंग अकाउंट है और अगर आप इसको करंट में कन्वर्ट करवा लें तो इसमें बड़े फायदे हैं, आपको इस पे ज़कात सर्टिफिकेट नहीं देना होगा, आपको इस पे चेकबुक के जो है पैसे नहीं देने होंगे वगैरह वगैरह,
ट्रांजेक्शन जो हैं वो,
ठीक है। अब बैंक ये नहीं बता रहा कि जो आपका सेविंग अकाउंट है उस पे आपको 20% इंटरेस्ट मिलना
पड़ेगा
और करंट अकाउंट में 0 इंटरेस्ट है। असल बैंक का फ़ोन करने का मकसद ये है अपना 20% का इंटरेस्ट बचाना।
सही है,
तो अब जो एक फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन है या अदरवाइज लिटरेट है उसको तो बात समझ आ गई, लेकिन एक आम शख्स जो है जितनी हमारे यहाँ ओवरऑल लिटरेसी है उसको अगर ये फ़ोन जाता है तो हो सकता है कि वो कन्वर्ट करवा लें।
वैसे तो कंपटीशन कमीशन के तहत भी आता है, क्योंकि अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस है ये,
अनफेयर बिजनेस।
आप पूरी बात अपनी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, आधी बात डिस्क्लोज कर रहे हैं। और मैं इदरीस साहब, ये तो इतना बड़ा एक स्कैम है, मैं देखता हूँ कि नई जनरेशन जो है, जो लोग बिल्कुल यंग लोग हैं, कोई पीएलएस अकाउंट नहीं खुलवा रहा, क्यों नहीं खुलवा रहे, सर्विसेज बेहतर नहीं है, अकाउंट नहीं खोलते, तंग करते
खोलते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट।
और अच्छा फिर ये कि हर 6 माह बाद उनके जो एक स्केड्यूल ऑफ चार्जेस है वो नया बन के आ जाता है, मर्जी से उसमें सब कुछ बढ़ा दिया जाता है। स्टेट बैंक इन्फ्लेशन बढ़ाने वाला रेगुलेटर।
एग्जैक्टली। तो वो मैं यही कह रहा हूँ कि जी रेगुलेटर चाहे नेपरा हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे ओगरा हो, तो ओगरा नेपरा स्टेट बैंक में लोग इसी सोसाइटी से आ रहे हैं। तो जब सोसाइटी में जो है हमारा एक प्रॉब्लम ये भी है, ये सब्जेक्ट अलग हो जाएगा, कि करप्शन की तरफ हमारा बहुत बेनाइन एटीट्यूड है। वजह ये है कि वो हम जो हम ये हाई प्रोफाइल करप्शन सुनते हैं ना, तो हम कहते हैं नहीं जो कोई सबूत तो मिला ही नहीं, तो ऐसे ही टाइम ज़ाया हुआ। लेकिन अगर अब भाई आप नीचे उतरें और आप देखें कि एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने एक मोटरसाइकिल वाले को रोका हुआ है और दोनों में कोई बातचीत हो रही है, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या
हो रहा है।
तो ये जो करप्शन है ये आपके हर वक्त जो है ट्रैफिक पुलिस में हो रही है, आपकी थाने कचहरी में हो रही है। अब थाने कचहरी वाला जो SHO है, अगर वो करोड़ों रुपए की रिश्वत दे के जो है, अगर वो SHO लगा है,
बिल्कुल है ऐसे,
और फिर उसको ऊपर भी देना है और नीचे भी देना है, तो फिर वो जो है क्राइम को रोकेगा या क्राइम को इनकरेज करेगा?
अच्छा देखिए, जैसे
इस ओवरऑल गवर्नेंस का इशू है, सिर्फ किसी एक रेगुलेटर का नहीं है।
जो गवर्नेंस का आवा है इसको हम यूँ ज़रूर कह सकते हैं, गवर्नेंस का पूरा जो आवे का आवा है बिगड़ा हुआ है। और वहीं दुरुस्तगी देखें हमेशा ऊपर से होगी, नीचे से नहीं हो सकती। नीचे से एक प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है, मूवमेंट बनाई जा सकती है, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड की जा सकती है कि भाई आप बेहतरी लाएँ ऊपर से। ये इसको आप यूँ समझ लें कि IG ट्रैफिक अगर सूबे का है या इस्लामाबाद का IG ट्रैफिक जो है, जिस दिन वो चाहे ना कि नीचे कुछ नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा, आपको भी पता है।
एग्जैक्टली। वो देखिए बात यही है ना कि एक आप आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो है वो
लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो नीचे से जो कुछ चलता है वो ऊपर तक पहुँचता है।
एग्जैक्टली।
बस
लेकिन जो है जब आप ऊपर को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं सबूत नहीं है।
मैंडेट जब दिया जाता है तो उस मैंडेट को तो निभाने है।
मैं तो ऊपर से मतलब फिर प्राइम मिनिस्टर लूंगा।
बिल्कुल
प्राइम मिनिस्टर से शुरू करूंगा।
चीफ एग्जेक्ट देखिए मैं बिल्कुल एक मतलब सूबों का हम अलहदा कर लें, जैसे सूबे में अगर कहीं एक छोटा सा मुलाजिम भी रिश्वत ले रहा है, कोई अपनी अथॉरिटी को अब्यूज़ कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी सूबे के चीफ एग्जेक्टिव तक आती है। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट का जो चीफ एग्जेक्टिव बैठे वज़ीर आज़म, जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी उस तक भी जाती है।
मसला ये है कि देखें, एक तो ये है कि अक्सर ये बात होती है कि जी ये करप्शन तो एविडेंस मौजूद है कि वो फलां कंट्री भी करप्ट है और ये है और वो, और देखें उसका GDP तो ऊपर जा रहा है करप्शन के साथ। एक तो ये मिसनोमर, हम एग्जैक्ट चैनल्स नहीं देख रहे। दूसरा ये भी अक्सर कहा जाता है कि जी करप्शन की बात को छोड़ें, गवर्नेंस को ठीक, करप्शन एंड गवर्नेंस आर इंटर रिलेटेड है। मैंने आपको कहा ना कि जी SHO का काम है क्राइम को रोकना।
गुड गवर्नेंस का ग्राफ जितना ऊपर जाएगा करप्शन उतनी कम होगी, सीधी सी बात है। बिल्कुल हाँ जी।
नहीं तो अदरवाइज मैं तो उल्टा कहूँगा कि करप्शन जितनी कम होगी गवर्नेंस उतनी बेहतर होगी।
अच्छा मुझे एक बात और इसमें याद आ रही है, वही जो मैंने चेक रिपब्लिक की बात की ना डॉक्टर वैक्लव क्लास की, तो उन्होंने एक बात अपने इंटरव्यू में और बयान की थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है ना वो तो कारोबार कर ही नहीं सकती ना, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। वो कहते हैं गवर्नमेंट प्राइवेटाइज भी नहीं कर सकती। ये इंटरेस्टिंग बात जो थी ना उनकी, और ये बात मतलब पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे सादिक आती है कि ना तो वो SOEs को चला सकते हैं और उन्हें प्राइवेटाइज भी नहीं कर सकते हैं। 20-30-40 साल हो गए प्राइवेटाइज नहीं कर सके हैं अब तक।
मैं फुली एग्री करता हूँ जी आपसे। प्राइवेट मैंने कहा ना आपका PTCL की मिसाल मौजूद है आपके पास
जी,
$800 मिलियन अभी भी रहते हैं।
सही,
गलती किसकी है वो एक अलहदा बात, लेकिन हमने डील बुरा किया ना, तो हम प्राइवेटाइज भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते।
हाँ जी बिल्कुल वही बात है ना जो इसने किया, जो आदमी ने किया। हाँ जी, तो इदरीस साहब बहुत शुक्रिया, आज हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी रही है। तो फिर हमारा जो ये वीडियो सीरीज़ है मुकालमा सबके साथ, किसी और मौजू पर भी हम आपके साथ फिर बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर हैविंग।
आज हम अपनी जो वीडियो मुकालमा सबके साथ है उसका इख्तिताम तक पहुँचते हैं, हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है। और आइंदा दूसरी वीडियो में हम किसी और मेहमान के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।